नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय
भाई जो बातचीत करेंगे उनको पास वाले उसको वहां से हटा करके बाहर कर दो, कोई भी बोले नहीं, चुपचाप सुनो, और नहीं तो जिनको जाना है वो आगे चले। ये लोगों को बच्चों को रहने बैठने की जगह नहीं मिल रही। हाँ, जो कोई हल्ला करेगा उसको उठा दें, एक भी बात नहीं है। रोहिणी मैया की बात सुनकर बलदेव जी विचलित हो गए और बोले कि गैयों की तो बात ही क्या, तुम्हारे बीरह में ब्रज के हिरण हिरणे पशु पक्षी मयूर पपीहे कोयल इत्यादि विरह में तड़प रहे, भांडीर बन कदम्ब खंडी और दूसरे जो पीलू के तमाल के वृक्ष हैं, लता पुंज हैं, तृण भी है, हरी हरी घासें तुम्हारे जीवन तुम्हारे विरह में तड़पती हुई सूख रही हैं, सब मानो अब मरने का ही बाकी है। पर्वत भी दिन पर दिन क्षीण हो रहे हैं। जब कृष्ण ब्रज में चले, ब्रज से चले गए मथुरा में और फिर वहां से चले गए द्वारका में, तो उनके विरह में ऐसी दशा हुई, तो ब्रज के गोपियों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी तीन गुल्म लता इत्यादि सब विरह में अस्थिर हो। जमुना जी विरह में सूख गई, जैसे अभी कार्तिक के महीने में होता है, एकदम सूख करके पतली छींद धारा रह जाती है, उस समय आचमन करना भी कठिन होता है। और पर्वत गिरिराज गोवर्धन और दूसरे जो पर्वत हैं ब्रज में, वो भी थोड़े 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 विरह में क्षीण होकर के जी इतने ऊंचाई में थे, एक मील से भी अधिक ऊंचा, वो धीरे धीरे क्षीण होकर के अब पृथ्वी में चले जा रहे हैं। पहले कृष्ण को देख करके मयूर मयूरी नाचती थी, कोयल कुहकती थी, भ्रमर गुंजार करते थे फूलों पर, अब फूल ही नहीं फूलते। इस प्रकार से विरह की बातें बलदेव जी ने कृष्ण से कहा। भैया, मनुष्य में कोई कोई ब्रज के रहने वाले रहने वाली गोपियां ब्रज के गो, अब कोई कोई केवल जी रहे हैं इसलिए कि तुमने कहा है ये जरूर आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, इसी के लिए ये तुम सत्यवादी हो, इसलिए सत्य मान करके वो किसी प्रकार से जीवन धारण कर रहे हैं, किंतु कितने दिन जीवन धारण करेंगे, कल परसों वर्ष हो गए और फिर भी तुम नहीं जा रहे हो, बस इसीलिए जीवन धारण कर रहे हैं कि यदि कृष्णा आएंगे तो देखेंगे जो हम लोग नहीं है तो वो भी विरह में छटपट करते हुए मर जाएंगे, इसलिए किसी प्रकार से जीवन धारण करें। और मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं और तुम अधिक सुनने की इच्छा मत करो, और जो कहेंगे तो तुम भी पागल हो जाओगे या ना जाने तुम्हारी कैसी दशा हो जाएगी। किंतु इदानीम अपि भवामि जगत, तन्नानुकंपते जमेव तदा सर्वान वेगा वेगेन अनुग्रहिष्य। यदि फिर भी तुम ब्रज में नहीं गए और उन पर अनुग्रह नहीं किया तो अब तो जम ही उन पर कृपा करेंगे। जम महाराज अनुग्रह करेंगे माने क्या? जम महाराज अनुग्रह करेंगे मृत्यु आ जाएगी, बस सब क्लेश मिट जाएगा। तो उनका जब वो मर ही जाएंगे तो बंधु का जो वियोग है गिरह है वो तो अपने आप ही दूर हो गया। मैं ब्रज की दशा और क्या कहूं। आपने तुमने काली ह्रद का पानी निर्मल किया था, काली वहां पर विष उगल रहा था, ब्रज के लोग मर रहे थे, पशु पक्षी भी उसके उसमें विष से मर रहे थे, तो कृष्ण ने उसमें कूद कर और उसको पकड़ करके नथ दिया और नथ करके उसको वहां से बाहर निकाल दिया, वो रमणीक द्वीप में चला गया। तो वो अब विष नहीं है उसमें। तो ये ब्रजगोपियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए ये बड़े दुख का विषय है। यदि वो विष उसमें रहता तो विष पान करके मर जाते, अब तो मरने का उपाय भी नहीं है। और भी सुनो, जमुना नदी में डूब करके मरेंगी तो वहां पर पानी नहीं है, मरेंगी। और गोवर्धन से कूद करके आत्महत्या करेंगे तो गोवर्धन तो बहुत नीचा हो गया, वो कहां से। इसलिए जो गोवर्धन तुम्हारे हाथों पर उठ करके स्वर्ग तक विराजते थे, आज एकदम नीचे मिट्टी में धस रहे हैं। एक माइल ऊंचे थे कृष्ण के समय में, फल फूलों से भरे हुए सरोवर, स्वच्छ निर्मल पानी उनमें थे, कोयल और सब कुछ से भरा हुआ, पशुओं से भरा भरा, और सर्वत्र हरे भरे वृक्ष लता गुल्म थे। आज वो भीतर में चले गए और जो ऊपर में दिखाई पड़ता है वो टुकड़े टुकड़े विरह में हो गए, अर्थात उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गए। जानती अनशनात प्राणस्तन नाम अमृत सेवन, तो वो मर के नहीं जाते, या मर के नहीं जाते ब्रजवासी लोग, मरे कैसे? आपका नाम जो सब समय लेते हैं उस नाम को भूल नहीं पाते, और आपकी कथाएं परस्पर बोलते हैं, बड़ा निष्ठुर है कृष्ण, हम लोगों को कैसे विरह में छोड़ करके चला गया। इसलिए उनके नाम और कथा में अमृत भरा पड़ा है। जो कोई नाम लेता है वो मरता है, तब कथा अमृतम तप। जो मरने वाले हैं भगवान का नाम लें तो वो मर नहीं पाते हैं, इसलिए ब्रज के गोप और गोपी लोग मर नहीं पाते हैं, ब्रजवासी लोग। जो लोग अभी जीवित हैं आपके विरह में खाना पीना छोड़ दिया है, स्नान भोजन सब कुछ छोड़ दिया, अब किसी से वो बोलते नहीं, अपने बेटों से बेटियों से अपने पति से अपनी पत्नियों से और लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, केवल किसी प्रकार से कृष्ण कृष्ण कबाएंगे, कृष्ण 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 करते हैं, इसीलिए वो बचे हुए हैं, प्राण उनका नहीं निकल रहा है, चाहते हैं जो प्राण निकल जाए, नहीं निकल रहा। अब तो केवल मैं यही देख रहा हूं, बलदेव जी कह रहे हैं कि अब उनकी गति कहां है, महाबन के मुंजाटवी में, मतलब क्या है? मंजावटी में आग लग जाएगी दावानल और उसी में मरने की तैयारी में, ऐसे उनका प्राण नहीं निकल रहा। ऋषि जी ने कहा भैया सावधानी से सुनो, कृष्ण ये सब बातें सुनते हैं परम कातर दूसरों के दुख में कातर हो जाए। उनका स्वभाव बहुत मृदु कोमल है, मक्खन से भी कोमल है। इतना सुनते ही कृष्ण अब ठहर नहीं सके, बड़े जोर से रोने लग गए और बलराम जी के गले को पकड़ करके और ऐसे दिनवत रोदन करने लगे और रोदन करते 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 आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, गंगा जमुना जैसी। हे माता जी, इसके बाद में रोते रहते दोनों भैया जमीन के ऊपर ही गिर पड़े, भूमि तल पर पड़ी। थोड़ी देर में रोते रहते वो मूर्छित होकर के जमीन पर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनको इस प्रकार से रोए रोते हुए देख करके, अमूर्छित होते देख करके वहां उपस्थित जो रोहिणी मैया थी, उद्धव जी थे, देवकी मैया और मदन की मैया रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और अंतापुर की जितनी भी महिलाएं और पुरुष थे, वो भी कृष्ण की और बलदेव जी की ऐसी दशा देख करके धैर्य नहीं धारण कर सके और रोदन करते 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 एकदम विकल हो गए। उस समय ऐसा कोई नहीं था उपस्थित जो सब किसी को प्रबोध देता, सभी विरह में कातर ऐसे हो गए, इनको कोई भी प्रबोध देने वाला, सांत्वना देने वाला नहीं रह गया, सभी मूर्छित जैसे होकर के गिर पड़े। इसलिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से देखा, अरे ये क्या हो रहा है, सभी ब्रजवासी भूमि पर गिर करके पड़े हुए हैं, कृष्ण और बलदेव जी मूर्छित हो रहे हैं। वे वेद पुराणों को और उसके परिवारों की मूर्तियों को लेकर के, मूर्ति माने वेद पुराण के और कागज नहीं है, वेद पुराणों की प्रतिनिधि कोई देवता है, किसी की देवी प्रतिष्ठाता देवी है, उन सब परिवारों को और देवताओं को लेकर के स्वयं इसी स्थान पर आए। हु कैन ट्रांसलेट, आई हैव टोल्ड सो मच, बातचीत मत करना, ऐसे जैसे शांत होकर के सुन रही हो ऐसे सुन।
So, she was really explaining how during this part of Sri Grand Bhagavatam Ritual, she was Sanatana Goswami. Bhagavad Prabhu has been hearing the conclusions of Rahini Maya, who had been describing the separation of the cows in Vrindavan. Bhagavad Prabhu said, what to speak of the cows in Vrindavan? Even out of separation from Krishna, the deers, bucks and doves, the cuckoos, all birds and beasts, no, not only them, even the trees in Bandirvati, Kadambakandi, even the creepers and the blades of grass, all have become completely dried up in separation from Krishna. So, all the mountains, such as Giriraj, Govardhan, day by day, out of separation, they're becoming leaner and leaner and gradually disappearing into the ground. So this is a condition of Vrijvasis when Krishna went to Mathura and to Dwarka. So if the trees and animals and mountains and creepers are in this condition, then what will be the condition of separation of gopis of
Vrindavan? जो जा रहे हैं उनका स्वागत।
इवन जमुना, द रिवर जमुना हैज ड्राइड अप एंड नाउ इट बिकेम जस्ट लाइक अ वेरी,
आज जाओ फिर पीछे आना,
सी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ पाजी, बिफोर माउंटेन्स लाइक गिरिराज गोवर्धन दे वर मोर देन 1 माइल हाई, बट ग्रेजुअली दे डिसअपीयरिंग and entering into the ground. Now, in the absence of Krishna, the peacocks no longer dance, the bumblebees no longer take honey from the flowers. So Balaram Prabhu, he said, for the sake of Vrishvasini's gopis and gopis, you must return. Because they only maintain their life, the only reason they stay alive is because they remember your promise. And they're thinking of Krishna Satyavadi. He always speaks the truth, so he must return. With this hope, they're maintaining their life. Just about. But for how long can they stay alive? So don't delay. If you don't go at once to Vrindavan and give mercy to the Vrindavasis, then Yamaraj will give mercy to them. What does that mean? That means they must give up their life. So he said, Krishna, you will have to return to Vrindavan. And then automatically on meeting with you, their separation will go away. There is no other way. The poison of Kalia was so strong, or it killed all birds and even Vrindavasis became unconscious. But Krishna delivered them from this. So won't you deliver them from this pain of separation? They cannot give up their life from jumping from Govardhan. Why? Govardhan became very small. And how are they staying alive? Because they always take your name. Always saying, oh Krishna, Krishna is so cruel. Even in a negative way, by taking Krishna's name, they stay alive. And always having Krishna Katha. So it means that the discussions of Krishna and his name, they are amrit, they are nectar. And it keeps one, makes one immortal. Tavakta Katharitam, Tavakta Jivanam. Baldev said, all Vrishvasis have given up eating, drinking. They don't speak with their family members or anything. Only they call the name, Krishna, Krishna. Oh Krishna, when will you return? When will you come back to Vrindavan? So hearing this, Krishna is feeling very intense pain because his heart is softer than butter and he cannot tolerate the pain of others. So Krishna was loudly crying and he kept his arms around the neck of Baladev Prabhu and embracing him. Tears were flowing from his eyes like Ganga and Jamuna. And then he began to roll on the ground and he fainted and became unconscious. At that time, Rohinaya, Devaki, Rukmini, Satyabhama, all the ladies in the most chamber of the palace, and all the male members of the royal assembly there. Everyone, they could not hold their patience for another moment, and everyone broke down crying. All were weeping bitterly. And everyone felt so much pain of separation that there was no person left to console them, because all were feeling separation. So at that time, Chaturmukha Brahmaji, Lord Brahma, from Brahmaloka, he saw what was going on, and he came there along with his associates. Those associates are the Vedas, who they are actually devatas, demigods, and they are the representatives of the various Vedas. So along with all of those associates, Lord Brahmaji, he arrived there in Gwalior.
Brahmaji, apne parikaron ke saath mein sare devtaon ko और वेद उपनिषद शास्त्र के प्रतिष्ठाता देवता देवियों को लेकर वहाँ पर पहुंचे और देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे हमारे पिता नारायण के भी नारायण महानारायण और गुरु स्वरूप ये जो कृष्ण हैं ये मोह को कैसे प्राप्त हो? इनकी माया से तो सारा विश्व मोहित होता है। यहाँ तक कि देवता लोग देवी लोग सब लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं और ये मोहग्रस्त खुद ही हो गए। बड़ी बड़ा ही आश्चर्य प्रकट करते करने लगे और रोदन करने लगे। रोदन करते 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 कुछ मूर्छा सी इनकी आए, तभी उन्होंने कृष्ण के भावों को समझा। ये कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे? ये तो स्वयं भगवान के भी भगवान है। ओ बड़ा इनको सुन समझ करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कृष्ण बड़े दयालु, जगत में हमारा सबसे बड़ा प्रेमी प्रेम पात्र कौन है? इसको प्रकट करने के लिए ये चातुरी से ऐसा बहाना बना रहे हैं, जब लोग समझें कि गोपियों में गोपियां ही हमारी सबसे प्रेम की पात्र हैं, और उन गोपियों में भी राधिका जी मेरी हृदय की हृदय जीवन की जीवन स्वरूप हैं, ये जगत के लोग समझें, इस चीज के लिए वो इतना कर रहे हैं। आगे बतलाएंगे जे कैसे इसके संबंध में विचार वो कृष्ण प्रकट कर रहे हैं। उनका यह निगुण प्रेम की माधुरी को देख करके धैर्य चूक हो गए। इन गोपियों पर इनका इतना प्रेम और स्नेह, ब्रजवासियों पर विशेष करके गोपियों पर इनका इतना स्नेह, जिसको प्रकट करने के लिए संसार में, और ये कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। संस्तुभ्य जत्नात आत्मनम स्वास्थ्य जनी तुम प्रभो उपायम चिंतयामास प्रापो च अंतरम मृदि। उन्होंने हृदय में विचार किया क्या करूं, जिनको चेतनता कराऊं, चेतन कराऊं। पहले तो उन्होंने स्तौ स्तुति किया, धैर्य धारण करके स्तौ स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करेंगे, आप बड़े दयालु हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, ब्रजवासियों की महिमा बढ़ाने वाले हैं, और आप ब्रजवासियों के संपूर्ण अधीन हैं, सारा जगत आपके अधीन है, आपसे ब्रह्मा नारद नारायण नृसिंह भगवान राम इत्यादि सब आपसे निकलते हैं, और आप इस प्रकार से लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए, स्तुति करने लग गए और भी मन ही मन में विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, कोई उपाय जिससे कि कृष्ण और बलदेव चेतन होकर के फिर उठ करके बैठ जाए। उसी स्थान पर गरुड़ जी भी उपस्थित, देवताओं के अनुभवी देवता हैं, गरुड़ जी भी रोदन कर रहे थे, रो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया, गरुड़ कृष्ण के वाहन तुम इधर आओ, और दोनों को गरुड़ को संबोधन करके फिर बड़े जत्न से उनको चेतन प्रदान करके चेतनता होश में लाकर कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये द्वारकापुरी है और चारों तरफ में लवण समुद्र है, चारों तरफ में, और इसके बीच में रैवर्तक पर्वत है, और यह रैवर्तक पर्वत पर विश्वकर्मा ने कृष्ण की इच्छा से या मेरी इच्छा से श्रीमन नंद और यशोदा की मूर्ति ऐसी तैयार की है, ये मानो जीवित बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसी मूर्ति, दिव्य मूर्ति तैयार की। इन मूर्तियों को तो हम देखते हैं कि ये चल नहीं फिर सकते, बातचीत नहीं करते, किंतु विश्वकर्मा ने जो बनाया ऐसा मालूम होता था कि ये बातचीत करने को तैयार हैं या बात कर रही हैं। और वहां पर नंद यशोदा जी हैं और सारी गायें वहां पर है, और सुंदर मैदान बना दिया है जिसमें वो हरी हरी घासें मानो चर रही हो, किंतु है मूर्ति प्रस्तरमयी, और उसी में इन लोगों से अलंकृत गोपी गाभी इत्यादि से समलंकृत एक नया वृंदावन, नव वृंदावन की सृजन किया है, बनाया है। वहीं पर मानो मथुरा मंडल में स्थित ये जो ब्रजपुरी है, ब्रजमंडल वृंदावन है, मालूम होता है ठीक वैसा ही है, जो बीच में उपस्थित होगा समझेगा यही ब्रजमंडल है, किंतु छोटा है ना, मिनी, इसलिए यदि इधर उधर कोई जाए तो समझ लेगा कि सारे ये हम कहाँ हैं, और बीच में जो खड़ा रहेगा वह नहीं समझ पाता है। इसलिए गरुड़ को कहते हैं, गरुड़ तुम कृष्ण को और उनके बड़े भैया बलदेव दाऊ जी को किसी प्रकार से इसी स्थिति में मूर्छित स्थिति में ही किसी प्रकार से अपने पीठ पर ले। गरुड़ जी पक्षी भी नहीं है, पक्षी ही नहीं है, सर्वसमर्थ है। इसलिए कह रहे हैं जैसे तुम इनको अपनी पीठ पर लेकर के और नौ वृंदावन जो बना है रघुवर्तक पर्वत में वहां ले जाओ। अकेली रोहिणी मैया वहां जाएगी और यशोदा की नंद बाबा की गोप गोपों गाय की मूर्तियां हैं। कृष्ण इस स्थिति में ये भेद नहीं कर सकेंगे कि वो लोग मूर्ति है कि क्या है, और रोहिणी मैया उनको वहां से बातचीत करेंगी बतलाएंगी उस स्थान पर। और कोई भी नहीं जाए, कोशी को भी नहीं जाना है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी गरुड़ को स्वस्थ करके और कृष्ण और बलराम को गरुड़ जी ने अपने पीठ पर चढ़ाया और उनको कहा जे ले जाओ वृंदावन। गरुड़ जी चढ़ा करके अपने पीठ में जहां नौ वृंदावन बना था वहीं पर ले जाकर के उतार दिया और अपने आकाश मार्ग में उड़ करके किसी ऐसे स्थान से देखने लगे जो उनकी शादी ली जाए। और इधर नारद जी वहां पर थे, नारद जी भी आकाश मार्ग में जाकर के पट्ट बांध, पट्ट माने होता है जो वहां पर स्थिर हो गए किसी जगह और वहीं से देखने लगे। सब लोग वो कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे किंतु और उनको कोई नहीं देख सके। इस प्रकार से वहां पर जाकर के सारी लीलाओं को दर्शन कर लिया। भाई
हमारे लिए बहुत असुविधा है, हमारा शेड्यूल जो है ना वैसा बनो नहीं, जब तक नहीं बनता है तब तक वही टेबल ला जिस पर
विश्वकर्मा में मूर्ति है नंद बाबा एंड यशोदा मैया सो एट्रैक्टिव जस्ट लाइक दैट मूवी अबाउट टू टॉक बट हियर इन दिस वर्ल्ड द मूर्ति इट लुक लाइक द स्टैंडिंग नॉट स्पीकिंग बट मेड बाय विश्वकर्मा इट सीम्स दैट अबाउट टू टॉक नॉट ओनली दैट मोरओवर विश्वकर्मा मेड सो मेनी काउस एंड काउस and in glasses, artificial, it seems the cows and the calves are grazing glasses. It's so like original. And Brahma told Ogur, you get them and put in the midst of that Ayurveda Parva and then you can answer it. Getting order from Brahmaji, so you took Baladeva and Krishna on his back and went to Ayurveda Parva and put them down there and he went there from there and he climbed the sky and he situated in such place and from that place none can see him and he can see the all pastimes of Sri Krishna and Baladeva Prabhu. After that, Narayana also went there and he being in some places, situated in some places, he is looking all pastimes. And Brahmaji ordered, none can go, only Mata, when he will go there. And Krishna in this situation, he is unable to differentiate that he is in Vrindavan or anywhere else. The Nanda and Yashoda Maiya, this murti is original or murti, he could not differentiate. So only Rahima will go and he tells everything to Krishna and Bhagavad Prabhu. So getting this order, Guru did this and he situated some place to see the pastime as well as Narada did same thing, Hare Krishna.
इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वसुदेव जी को देवकी जी को सप्तभामा रुक्मिणी इत्यादि को स्वस्थ करा करके अपने अपने स्थानों में भेज दिया। वो लोग सब चले गए। इधर गरुड़ जी उस स्थान पर कृष्ण को ले गए जहाँ पर कि गोप गायों की मूर्तियां बनी थी, यशोदा और नंद जी की मूर्तियां बनी थी, यहाँ पर गायें मानो घास चर रही हैं, ऐसे सुंदर जगह में ले गए और उनको वहां पर उतार दिया। उतारने के बाद में थोड़ी देर में ही बलदेव जी को कुछ कुछ होश आया। उस रचित वृंदावन में, न्यू वृंदावन में पुत्र वत्सला देवकी रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि देवियों को पद्मावती इत्यादि तो वहां से किसी प्रकार से समझा बुझा करके और वहां से अपने अपने घरों में विदाई कर दी। अर्थात उद्धव के सहित वो लोग जाने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उद्धव के साथ में कहीं आ करके छिप करके देखने लगे कौन पद्मावती सत्यभामा रुक्मिणी और जो रानियां थी वहां से दूर हटा दिया। वसुदेव देवकी को तो क्यों, माता पिता है ना, ब्रज के लीलाओं को देखने का अधिकार नहीं है गोपी, और ये लोग महिलाएं हैं इसलिए उनको वहां पर रखा, किंतु दूर से रखा जो कृष्ण उनको न देखें, किंतु कृष्ण को और उनकी लीलाओं को वो देखें और चमत्कृत हो जाए, समझे कि हाँ ब्रज के कृष्ण कैसे हैं, गोपियों को कितना स्नेह करते हैं। वे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से कुछ दूर पर किसी झाड़ी झूड़ी में छिप करके दर्शन करने लगे। नारद जी ने सोचा कि हमारे लिए ही कृष्ण और बलदेव मूर्छित हुए और सारी इस विपत्ति का जड़ मैं हूं, ऐसा सोच करके उन लोगों के साथ में नहीं गए जैसे पहले साथ में, वो आकाश मार्ग में जाकर के वहीं पर एक जगह से स्थिर होकर के मेघों की आड़ से देख लिया। और गरुड़ जी ने क्या, गरुड़ आकाश मार्ग में चले गए, यदि धूप आ रही है तो अपने पंख फैला करके सूर्य के
प्रकाश को ताप को उन्होंने ढक दिया और लोग समझ न सके, इस प्रकार से प्रभु की सेवा करने लगे। और बलदेव जी जो कुछ कुछ उनकी मूर्छा छूट चुकी थी, होश में आए थे, ओ ब्रह्मा जी की बातों को समझ गए ये किस लिए ऐसा हुआ। कृष्ण को प्रबोध जानने के देने के लिए ऐसा ब्रह्मा जी ने किया है, गरुड़ को बुलाया है, वेद शास्त्रों को बुलाया है सबको। बलदेव जी उठ करके पानी लेकर और उनका मुंह पहले धोया, जो कृष्ण रोते रोते आंखों के काजल इत्यादि बह गए थे उसको साफ कराया, और पीछे से उनके शरीर में भी जो काजल इत्यादि के रोने से जो दाग लग गए थे, मिट्टी भर गई थी, उस सबको धीरे धीरे कपड़े से भिजो करके उनको साफ सुथरा बनाया। और फिर वहां पर बंसी जोग माया के प्रभाव से पड़ी थी, विश्वकर्मा ने बनाया था, वो बंसी जी को क्या किया, उनके जठर पटर में लगा दिया और श्रृंग बाजा उनके यहां पर लगा दिया, ब्रज जैसा मोर मुकुट इत्यादि धारण करा दिया, बंसी भी धारण करा दी, और बेत्र गायों को चराने के लिए बेत, और कंठ में कदम्ब फूलों की मालाएं एकदम नीचे पर आदम लंबी जो माला, सब तरंगी बैजयंत की माला जो गोपियां राधा जी बनाती थी वैसे ही बना करके और उनके गले में दे दिया। फिर चूड़ा भी दे दिया, गुंजा गुंजा की माला, कानों में वैसे ही कुंडल गुंजा के या कनेर फूल के लगा दिए। इस प्रकार से विश्वकर्मा के रचित जो सामग्रियां थी कृष्ण को ऐसे सजा दिया मानो वो ब्रज में नंद बाबा के पुत्र हैं, अभी गैया चराने के लिए आए हैं, बलदेव जी के साथ में गायें चर रही हैं, ठीक ऐसे दृश्य बना करके। और बलदेव जी क्या करने लगे, अरे भैया उठो, कृष्ण भैया उठो, गायें चरने जा रही हैं, जा नहीं रही हैं, बछड़ों को दूध नहीं पिला रही हैं, सखा लोग तुम्हारे दरवाजे पर नंद बाबा के भवन में आ गए हैं, जल्दी उठो कह करके और जल पकड़ करके उनको बैठा दिया और बड़े जोर से कहने लगे, भैया कृष्ण कृष्ण ताक उठो उठो उठो, जल्दी उठो, आज अधिक समय हो गया, तुम ऐसा क्यों रो रहे हो, ऐसे सो रहे हो, अभी गाय डक कर रही है तुम्हारे बिना, जा नहीं रही है, जल्दी से आओ, अकेले श्रीदाम इत्यादि गायों को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो तुम्हारी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, माता और पिता स्नेह बस देखो तो रो रहे हैं, तुम आज देरी से सोया इसलिए, नंद और यशोदा की मूर्ति मानो ऐसे बनी हुई है जो माने अत्यंत विरह अनुभव कर रहे हैं, और ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, माने गूंगे हो गए हैं, और देखो ये गोपियाएं तुम्हारे मुख कमल की ओर में देख कर रहे, देख करके कानों कानों में कुछ काना खुशी करती हुई हंस रही हैं, ये देखो तो अभी तक सो रहा है, और तुम्हारा उपहास कर रही है, जगत के सब लोग उठ गए और अभी तक ये सो रहा है, मानो गोपियां उनकी भी मूर्ति है, किंतु भावना ऐसी बना रखा है विश्वकर्मा ने। अच्छी जी ने कहा, भैया देखो बलदेव जी इस प्रकार से कृष्ण को लालन पालन करते हुए बड़े प्यार से पुचकार करके नाम पकड़ के कृष्ण कृष्ण तात भैया कन्हैया कहते हुए उठा करके बैठा दिया, और फिर इस प्रकार से कृष्ण भी उत्सुक कर बैठा तो दिया, किंतु अभी होश नहीं पूरा आया है, होश नहीं आया, उसी में शिव शिव मंगल मंगल शिव शिव कह करके जम्भाई ली, मानो मैं ब्रज में ही हूं, यशोदा मैया के भवन में हूं, गैया चराना जाना है, इस तरह से जैसे कि प्रतिदिन उठते थे, उठ करके शिव शिव कहते हुए उठे, अंगड़ाई लेने लगे, कृष्ण ने आंखों को अब खोला, बड़ी मुश्किल से खुल रहे थे, किंतु किसी प्रकार से जैसे आदमी सोने के बाद में उठता है, जम्भारी लेता है, आंखें खोलता है, उस प्रकार से उन्होंने खोला और चारों तरफ में देखने लगे। देखा क्या, अरे ये तो मैया यहाँ पर खड़ी है, पिताजी खड़े हैं, गैया देख रहे हैं कि वहां पर खड़ी है, सब सखा लोग उत्तर में खड़े हैं। तो कृष्ण आंख मिचते हुए और कुछ मंद मुस्कान से कुछ हंसने लग गए, ओ और लज्जा से नंद बाबा को देख करके जो ओ आज तो मैं बहुत अधिक सो रहा है, उनको किसी प्रकार से प्रणाम किया। किंतु प्रणाम किसको किया, वो मूर्ति को प्रणाम किया। और फिर पासी में खड़ी थी मैया जसोदा, मक्खन हाथ में लिए हुए, उन्होंने बनाया था ऐसा। देखा जी मेरी मैया स्नेह से कुछ बोल नहीं पा रही, जड़वत हो गई हैं जैसे रोज होती थी, और हाथ में मक्खन है। तो आनंद से हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगवान ने, माता जी आज मुझे देर हो गई सोने में, मैंने न जाने कितने कितने स्वप्न देखे मैया। देखा जी मैं ब्रज छोड़ करके मथुरा में आ गया, फिर वहां से यहाँ आया और 16,000 रानियों से मैंने शादी की, और एक एक रानी को 10 पुत्र और एक कन्या हुई, और मैंने सबकी शादी वोदी कराई, कि इस प्रकार से स्वप्न हमने देखा और भी देखा। मैं वहां पर मथुरापुरी में जाकर के कंस को मैंने मार डाला, जरासंध इत्यादि राजाओं को पराजित करके, और देवताओं को भी मैंने सुखी कर दिया, और समुद्र के किनारे द्वारका नाम महापुरी का मैंने निर्माण किया, और वहीं पर मैंने और बहुत कुछ देखा। तुमको जब कल आऊंगा लौट करके गोचारण से, तब तुमको सुनाऊंगा। और मैं इतनी जल्दीबाजी है, ये गायें डकर रही हैं, सखा लोग वहां पर हैं, इसलिए मैं जल्दी से अब जा रहा हूँ। ये कह करके मैया के हाथ में जो मक्खन था ना, जैसे ब्रज में नृत्य करते हुए बड़े भावभंगी से लेकर के खाया नहीं, क्यों, बलदेव जी आगे चल गए, बिना बलदेव के खाएंगे नहीं। भाइयों में इतना स्नेह, आजकल भाइयों में स्नेह कैसा है, एक दूसरे पर बोली चलाते हैं। अरे उनकी तो बात छोड़ दो, हमारे गुरु भाई लोग भी, गुरु के शिष्य एक और गुरु बहने परस्पर लड़ती हैं स्वार्थ के, और इन लोगों में भैया में कैसा प्रेम। जब उनको दिया मैया ने, मक्खन भी ले लिया, किंतु लखन वो हाथ में लेकर के भैया आगे गए हैं, उनके साथ में दोनों बांट करके खा रहे हैं। हे आर्य, और बलदेव जी को क्या कह रहे, भैया ये समैया को जो मैंने बतलाया वो आपको बतलाया नहीं अभी तक, वन में चले यहाँ पर क्या जल्दी से बदला, वहां पर विस्तार पूर्वक, यदि आप असंभव न समझे तो मैं वहीं पर बतलाऊंगा। बलदेव जी तो समझ रहे हैं जी, ये भावावेश में ये बोल रहे हैं, वन में बोलूंगा। परीक्षित महाराज जी ने कहा, कृष्ण ने बलदेव भैया को इस प्रकार से सादर संभाषण करके मैया का को प्रणाम किया और उनके हाथ से मक्खन चुरा करके लेकर के चला। बस कैन यू कैन नॉट व्हाट यू कैन रसगुल्ला, यू कैन टेक रसगुल्ला इन योर माउथ। आज तो बहुत विलंब हो जाएगा, तुम लोगों का 7:30 बज गया, अब इसके बाद ही खत्म कर, मैं तो तुम लोगों को कष्ट करूंगा।
सो गुरुजी जी टू कृष्ण महाराज को पॉइंट इन मिर्सा गोविंद पर एंड इस हाइली सम है उसी का कष्ट है एंड आवर से का ब्रो आई एम द रूप ऑफ ऑल यू गिव टू माय सेल्फ एवरीथिंग हैपेंड सो क्रिटिकल पोजीशन so what should I do now? So now sitting in other place on the sky, he was watching all pastimes, what is going to happen. And Guruji, now not only merely about the fourth wings and so much as Sanhit. That Sanhit must not give any problem to Krishna Bhagavad and others. In other hand, Brahma ji told to Vasudeva and Devaki and send them away, consult them and send them away. Why? Because parents, Vasudeva and Devaki, they are not allowed to see the pastimes of Krishna with gopis. So some of other bad things, he sent them away. And Padmavati, Satyavana, Rukmini and others, Uttar keep them somewhere. And that behind a bush, they can notice the pastimes, but Krishna should not see them. Otherwise, it will become disturbing Krishna's pastime. So, gradually, Paramahansa came in sense. And he understood the Brahma's desire, what Brahma is doing and what he wants to do. So, he took some water and cleaned Krishna's face and body. Because Krishna weeping so bitterly and lamenting so much, so all tears came down from his eyes to on up to his chest, and mixed with Koryam made some spots. So Bhagavad could remove the spots and some dirt, because due to tears mixing with some dust made some dirt on Krishna's body. So Bhagavad remove all this thing. And Bhagavad Prabhu raised Krishna as it is like broad dress. He put the cup feather and put Bansi on his waist, top of his waist, put Srina under his armpit and rest in the dance, it is like broad dress. And embracing, oh Krishna, oh my dear brother, why are you sleeping so much? Look, your dignity is so delayed. So Mother Yashoda and Nanda Baba, they didn't like dinner. They are thinking, oh, why my son is sleeping so much? What is the cause? Not only that, moreover, look, how bodies are working towards you. They are whispering each other. Oh, everybody has woke up. Why sleeping so much? They are joking towards you. Don't delay. Oh, my dear brother, please get up. Embracing and make him sit. Then Krishna, then he became incensed. Little bit. And somehow or other, he opened his little bit eyes and yearning and taking his body. After that again, Shiva, means Paspisa. Every day he was used to do in Braj. And he opened his eyes, see Nanda Baba, giving pranam, holding his hand, and became so ascent. After that he saw Mother Yashoda standing close by. In Braj, if Krishna becomes a little bit delayed, then Mother is to be like inner and think so much, used to think so much. The same position. But, oh. And Krishna noticed there is some water in his mother's hand as before Mother is to do in Braj. So Krishna began to smile a little bit and came to Mother Yashoda in dancing pose like his Braj used to do. And he came up to Mother, took the water and come one step behind and told Mother, I became so late. Why you know? I see so many dreams. I give up Braj and came to Mathura. After that, I went to Dwarka and I met in so many queens. One 16,108. And each and every queen has 10 sons and one daughter. I arranged the marriage ceremony, everything. No matter. Now we can give it. So when I come back, I shall tell you details. So don't worry. And all of the world needs to be a mother. So Krishna took the mother, but not with him. Why not? So he is taken mother from mother's hand. Without offering to all of them, without sharing to all of them, how he can take? But nowadays, there is no attention between brothers. Even what to say? Nowadays they are shooting each other. Even between God brother and God said they are calling each other. But for Krishna brother at that time, nothing happened like this. So, all the told us
कृष्ण द्वारका में गए, बड़े सुख से निवास कर रहे हैं क्या? बीरा में तड़पते हैं, रोते हैं, किस लिए? गोपियां कितना उनको स्नेह करती हैं, प्राण न्योछावर उन पर कर देती हैं, और कैसी कैसी लीलाएं करती हैं, विष्णु ब्रह्मांड के नायक को अंगुलियों पर नचा देती हैं। उनको याद आती है ये कैसे गोपियों ने मुझे मेरी बंसी को चुरा करके और कैसे हमको नचा दिया। ऐसी ऐसी लीलाओं को याद करके कृष्ण धैर्य नहीं मान पाते और रोते 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 अस्थिर हो जाते। कैसे? जरा कृष्ण तुम तो याद है या तुम बोलो जो अच्छा गा सके। बंसी दे डारो ना। अच्छा ठीक है तुम बोलो। वो बहुत गा तक उसका गला खराब। तुम बोलो। अरे वो कहाँ गया गौर सुंदर? थोड़ा सा फुल मृदंग बजाए। कहाँ गया? उसका कान पकड़ करके ले आओ। लंबा चौक जगह खूब है, सारा जगत के लोग हैं वहीं। नहीं
बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री।